आगे चलते हैं आयत नंबर 12 से 19, 12 to 19। टॉपिक लिखिएगा, वो रह रहे हैं जानवरों की तरह, हिसाब देंगे इंसानों की तरह। जी, कुछ लोग दुनिया में ऐसे ही बदबخت हैं। जानवरों को भी पता है कि उनके रब ने उनको क्यों पैदा किया, लेकिन इनको नहीं पता, शिर्क कर रहे हैं। एक दूसरा टॉपिक जो रुकू के एंड पे आएगा वो भी लिख लीजिए, सदका जारिया के काम नहरों के रूप में। दुनिया में इंसान ने जो नेकियां की होंगी, कल अल्लाह उसकी नहरें जारी कर देगा। आइए पढ़ते हैं, इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, इन्हें अल्लाह यकीनन ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं, और जो लोग काफिर हुए वो दुनिया ही का फ़ायदा उठा रहे हैं और चौपायों की तरह खा रहे हैं। ईट ड्रिंक बी मैरी, इनका असल ठिकाना जहन्नुम है। मकसद के बगैर जीना तो फिर ऐसा ही होता है। हमने कितनी बस्तियों को, जो ताकत में तेरी इस बस्ती से ज़्यादा थी जिससे तुझे निकाला, यानी मक्का, हमने इन्हें हलाक कर दिया है, बस इनका मददगार कोई ना उठा। इशारा था कि इन मक्का वालों से भी अल्लाह खुद निबट लेगा। क्या बस वो शख्स जो अपने परवरदिगार की तरफ से दलील पर हो, इस शख्स जैसा हो सकता है जिसके लिए इसका बुरा काम खूबसूरत करके दिखा दिया हो और वह अपनी नफसानी ख्वाहिशों का पैरोकार हो? इस जन्नत की सिफत जिसका परहेजगारों से वादा किया गया है, ये है कि इसमें पानी की नहरें हैं जो बदबू करने वाला नहीं। खड़ा पानी स्मेल दे देता, जन्नत की नहरों में ऐसा नहीं होगा। और दूध की नहरें हैं जिनका मज़ा नहीं बदला, और शराब की नहरें हैं जिनमें पीने वालों के लिए बड़ी लज्जत है, और नहरें हैं शहद की जो बहुत साफ़ है, और इनके लिए वहाँ हर किस्म के मेवे हैं, और इनके रब की तरफ से मगफरत है। क्या ये मिसल इसके हैं जो हमेशा आग में रहने वाला है और जिन्हें गर्म खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, जो इनकी आंतों को टुकड़े टुकड़े कर देगा? और इनमें से बस ऐसे भी हैं कि जो आपकी तरफ कान लगाते हैं, यहाँ तक कि जब तेरे पास से जाते हैं तो अहले इल्म से पूछते हैं कि इसने अभी क्या कहा था। यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर कर दी, यानी गौर से सुनते कोई नहीं और बाहर जाकर बाद में फितने फैलाते हैं, और वो अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं। और जो लोग हिदायत याफ्ता हैं, अल्लाह ने इनको हिदायत में और बढ़ा दिया, अल्लाह हमें भी हिदायत में बढ़ा दे, और इन्हें इनकी परहेजगारी अता फरमाई, तो क्या ये क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये अचानक इनके पास आ जाएगी? यकीनन इसकी अलामतें तो आ चुकी हैं, फिर जब इनके पास क़यामत आ जाएगी इन्हें नसीहत करना कहाँ होगा? बस ए नबी, आप यकीन कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अपनी लग्जिशों की बख्शिश मांगा करें, और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के हक में भी। अल्लाह तुम लोगों की आमदोरफ्त की और रहने सहने की जगह को खूब जानता है। अल्लाह की नज़र हर एक पे है। चलिए जी, जन्नत की नहरें, न जाने क्या सदका जारिया के काम करके गया इंसान कि वहाँ नहरों की तरह आमाल नज़र आएंगे। अब देखिए कि नहर, लेक व्यू, शेडो लेक, ह्यूस्टन की एक कम्युनिटी थी शेडो लेक, बीच में एक लेक बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं आर्टिफिशियल, फिर उसके चारों तरफ घर और घरों के बैकयार्ड, ये शेडो लेक है। कराची में सी व्यू अपार्टमेंट्स बहुत मशहूर हैं, अगर आप कभी गए हों। हमेशा से इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि पानी के पास रहे। आज भी आप देखिए, अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है, दुनिया में अमूमन समंदरों के किनारे और जो बीचेस हैं उन पर ज़्यादा फहाशी और गंदगी और शराब कबाब के काम होते हैं। अल्लाह ने इंसानों के इस ज़ौक़ का ख्याल रखा कि उसको पानी के पास रहना अच्छा लगता है, तो जन्नत की नहरों की यहाँ बात कर दी। हदीस में आता है कि जन्नत में दूध, पानी, शहद और शराब के समंदर हैं, जिनमें से इनकी नहरें और चश्मे जारी होते हैं। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है 2571। अब आप देखिए कि शहद, लेकिन मुसफ़ा, साफ़ सुथरा होगा, मीठा ही मीठा होगा। शराब की नहरें जिसमें लज्जत होगी, बदबू नहीं होगी, टेस्ट अच्छा होगा। दूध की नहरें जिसका मज़ा नहीं बदलेगा, हमारा दूध तो थोड़ी देर बाहर पड़ा रहे तो टेस्ट चेंज हो जाए। पानी की नहरें जिसमें बदबू नहीं होगी। अब आप आज जाकर बच्चों से कहते हैं बेटा वहाँ दूध की नहर होगी, वो कहेगा मैंने नहीं जाना जन्नत में। बच्चों को ना जी बताइएगा, बच्चों को अमूमन दूध पीना अच्छा नहीं लगता। आपने कहा बेटा वहाँ चॉकलेट की नहर होगी, आइसक्रीम की नहर होगी, सुभान अल्लाह, एंडलेस सप्लाई, ना ख़त्म होने वाली बात है, ताज़ा ताज़ा चीज़ें, लुत्फ होगा। दुनिया में शहद मक्खी के पेट से निकलता है, छत्ते को तोड़ के निकालते हैं, फरमाया वहाँ ऐसा नहीं होगा। हज़रत अली कहा करते थे कि ये दुनिया क्या है, रेशम कीड़े का लुआब, शहद मक्खी के पेट का फुसला, और हम इनके पीछे दौड़ते हैं। वहाँ क्या है, ना हिसाब है ना ही फिक्र है। दुनिया में ना मिले तो फिक्र, मिल जाए तो फिक्र, खाना बच जाए तो संभाले किधर, और फिर उसको ख़राब होने से कैसे बचाएं। दुनिया की चीज़ों के साथ तो बंदे के साथ और भी तकलीफ़ें हैं, वहाँ क्या होगा। अल्लाह ताला नेमतों की सूरत में इसको पेश करेगा। और हमेशा ये आयत याद आती है मुझे कनाडा जाकर, जब हम नियाग्रा फॉल के सामने खड़े होते हैं। आप में से किसी को इत्तेफाक हुआ देखने का, आप वहाँ खड़े होकर इस आयत को पढ़ें ना तो आपको फील होगा कि आप इस दुनिया में नहीं खड़े हुए। और रात के वक्त वो उस पर लाइट्स डालते हैं, जैसे ये कभी कभी आप लोगों के शेंगलेट्स जो हैं इसकी रोशनियाँ बदलती हैं ना, रेड हो रहे हैं, कभी ग्रीन हो जाते हैं, कभी कुछ, तो वो रात को दूर से ऐसी लाइट्स डालते हैं कि तीन चार रंग, कहीं से बिल्कुल दूधिया पानी, कहीं थोड़ा सा मजला सा, तो मुझे फिर ये जन्नत की चार नहरें याद आती हैं। और एक जोश और आवाज़ होती है उसके पास खड़े हों, ऐसे लगता है अल्लाह की रहमत का ठाठे मारता हुआ समंदर। फिर उन्होंने उसके ऐसे ऊपर से गिरती, यूँ आती है ऊपर से बिल्कुल सीधा, देखे तो दरिया है लेकिन वो इतने प्रेशर से नीचे गिरता है पहाड़ों के अंदर सर फोड़ के कि सिर्फ फॉग, और उसके नीचे भी कश्ती जाती है। कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो जाएं, वहाँ खड़े होकर जन्नत याद आती है। लेकिन असल बात क्या है कि दुनिया में भी ये है, आपकी मेरी इन कोशिशों के अंदर जो अल्लाह के इस दीन को बचाने के लिए हैं। सूरत मोहम्मद का पूरा बुनियादी थीम यही है कि नबी सल्लम के सहाबा ने आपका साथ देकर दुनिया से जो कुफर और जहालत और शिर्क के अंधेरे मिटाने के लिए कोशिशें की थी, अल्लाह उसके बाद उनको ऐसी जन्नतों में भेज देगा कि जहाँ जाकर उनको अपनी सारी मेहनतों का फल मिल जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि आज हम इसके लिए तैयारी करें, दुआ मांगिए कि अल्लाह हमें जन्नत से महरूम ना करना। और क्या सीखा हमने, ज़िंदगी के हर मामले में सुन्नतों पर अमल करना है। मुशरिक और मवाहिद बराबर नहीं होते, इसलिए शिर्क और मासीयत से बचना है। जन्नत की नेमतों को पाने की सिर्फ ख्वाहिश नहीं रखनी बल्कि अमल भी करना है। अपनी नीयतों का जायज़ा लेना है, बेजा ख्वाहिशात से बचना है। सारी ख्वाहिशें अगर इधर पूरी कर ली तो उधर क्या मिलेगा। मोमिनीन की सिफात अपनानी है और गुनाहों की बख्शिश मांगनी है, अल्लाह ताला आसान फरमा दे। आगे चलिए आयत नंबर 20 से 28, टॉपिक लिखिएगा अफला यतदब्बरून अल कुरान। खाली दिलों पर ताले पड़ जाते हैं। ज़रा सा यहाँ पहले समझें फिर पढ़ूँगी। आप किसी के घर जाएं और बाहर इतना मोटा ताला डलाओ लॉक, जब किसी घर के दरवाजे के बाहर ताला लगाओ तो क्या पता चलता है कि घर अंदर से खाली है। जिस घर के अंदर कोई होता ना उसके अंदर से ताला लगता है, जिस घर में कोई नहीं होता उसके बाहर लगता है। बस यहाँ समझ लें, ये रुकू दिल के बंद दरवाज़ों को खोलने वाला है। और उसका तरीका क्या है, तदब्बुर पढ़ लें, फिर थोड़ी सी बात करेंगे और देखेंगे कि हमारा कुरान से ताल्लुक़ है और अस्हाबे रसूल का ताल्लुक़ क्या था। आयत नंबर 20 से वयकूलु लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान लाए वो कहते हैं कोई सूरत क्यों नाजिल ना की गई। फिर जब कोई साफ मतलब वाली सूरत नाजिल की जाती है और इसमें किताल का जिक्र किया जाता है तो आप देखते हैं कि जिनके दिलों में बीमारी है वह आपकी तरफ इस तरह देखते हैं जैसे इस शख्स की नज़र होती है जिस पर मौत की बेहोशी तारी हो, बस बहुत बेहतर था उनके लिए। यानी अल्लाह के दीन के रास्ते में काम के मौके उनको मौत लगते हैं। हाय फिर मेहनत करनी पड़ेगी, अब और कमिटमेंट करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरमान का बजा लाना और अच्छी बात का कहना, फिर जब काम मुकर्रर हो जाए तो अगर अल्लाह के साथ सच्चे रहें तो इनके लिए बेहतरी है। और तुमसे ये बात भी बईद नहीं कि अगर तुमको हुकूमत मिल जाए तो तुम ज़मीन में फसाद बरपा कर दो और रिश्ते नाते तोड़ डालो। ये वही लोग हैं जिन पर अल्लाह की फिटकार है और जिनकी समात और आँखों की रोशनी छीन ली है। क्या ये क़ुरान में गौर व फ़िक्र नहीं करते या इनके दिलों पर ताले लग चुके हैं? पूछिए, मेरे दिल के अंदर ताला लगा हुआ या बाहर? जो लोग अपनी पीठ के बल उल्टे फिर गए इसके बाद के इनके लिए हिदायत वाज़े हो चुकी, यकीनन शैतान ने इनके लिए इनके इस फेल को खूबसूरत करके दिखाया और इनको ढील दे रखी है। ये इसलिए कि उन्होंने इन लोगों से जिन्होंने अल्लाह की नाजिल करदा वही को बुरा समझा ये कहा कि हम भी अनकरीब बाज़ कामों में तुम्हारा कहा मानेंगे, और अल्लाह ताला इनकी पोशीदा बातें खूब जानता है। बस इनकी कैसी दुर्गत होगी जबकि फरिश्ते इनकी रुख कब्ज़ करते हुए इनके चेहरों और इनकी पीठों पर मारेंगे, ये इस बिना पर कि ये वो राह चले जिससे उन्होंने अल्लाह को नाराज़ कर दिया और उन्होंने इसकी रजामंदी को बुरा जाना, तो अल्लाह ने इनके अमाल एकारत कर दिए। पढ़ रहे हफ्ते अमाल, मैंने एक साल में गिनवाए थे लोगों को, पूरे पारे का 3 हफ्ते अमाल था। जैसे देखिए, दूध उबल जाए, पकी हुई इंडिया जल जाए, दाल गिर जाए, अफसोस होता है। क़्यामत के दिन उन लोगों की कमाइयाँ खप्त हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, ज़ाया हो जाएंगी, कि जो दिल के अखलास के साथ और नबी सल्लम के तरीक़े के साथ कोशिशें नहीं कर रहे थे। इसीलिए फरमाइए, इस बिना पर कि ये वो राह चले जिससे उन्होंने अल्लाह को नाराज़ कर दिया और उन्होंने इसकी रजामंदी को बुरा जाना, तो अल्लाह ने इनके अमाल अकारत कर दिए। नबी सल्लम ने फरमाया, कोई गुनाह इतना बड़ा और इतना बुरा नहीं जिसकी बहुत जल्दी सजा दुनिया में और इसकी बुराई आखरत में बहुत बुरी पहुँचती हो बनिस्बत सरकशी, बगावत और क़तअ रहमी के। अबू दाऊद की रवायत है 4902। क्या पता चला, सरकशी नहीं करनी, रिबेलियसनेस नहीं शो करनी, बगावत नहीं करनी, ट्रांसग्रेशन और किनशिप को नहीं तोड़ना। इसी तरह एक रिवायत में अल्लाह के नबी से आता है कि मेरे नज़दीकी कराबदार मुझसे ताल्लुक़ तोड़ते रहते हैं और मैं माफ़ करता रहता हूँ। यानी एक शख्स का सवाल था, वो मुझ पर जुल्म करते हैं और मैं इनके साथ एहसान करता हूँ, वो मेरे साथ बुराइयाँ करते हैं, तो क्या मैं इनसे बदला ना लूँ? हो सकता है आप में से भी आधे लोगों का यही सवाल हो, हम तो अच्छा बनते हैं वो नहीं बनते, हम मिलते हैं वो नहीं मिलते, हम लेना देना करते हैं वो नहीं करते। तो साहबी ने जब पूछा तो जवाब सुन लीजिए, आपने फरमाया, नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो वो तुम सब के सब छोड़ दिए जाओगे, तो सिला रहमी पर ही रह और याद रख, जब तक तू इस पर बाकी रहेगा अल्लाह की तरफ से तेरे साथ हर वक्त मदद करने वाला साथ रहेगा, यानी फरिश्ता। क्या पता चला, वन साइडेड लव। आप कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, कोई बात नहीं, आपको तालियां बजाने के लिए तो कहा भी नहीं गया, मदद तो एक हाथ से की जा सकती है ना। इसलिए अगर कोई आपके साथ अच्छा करे ना करे, आपने उनके साथ मामला अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे से अच्छा करना है। फिर दूसरा देखिए कि इस हिस्से में कुरान पे तदब्बुर की बात थी। कुरान से तदब्बुर के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं, एक तदब्बुर का है, एक तफक्कुर का है, एक तज़क्कुर का है, एक हिफ्स का होता है, एक इसके फहम का होता है। सबसे खूबसूरत ताल्लुक जो कुरान का है वो तदब्बुर का है। सबसे पहले हम सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, उसके बाद इस्तमा, यानी पहले समिया, फिर इस्तमिया, गौर से सुनना, फिर ज़िक्रा, रिमाइंडर, तज़कीर, जो बात पहले से पता उसकी याद दहानी, फितरत में गुंधी हुई चीज़ों की कुरान तस्दीक करवाता है, फिर तदबीर, तदब्बुर क्या है, अंदर की बात जानना। जैसे समंदर के किनारे पर खड़ा शख्स ये नहीं जान सकता कि समंदर की तहों में क्या है, मोतियों को लेने के लिए तो गोते लगाने पड़ते हैं, डाइविंग, उलमा ये काम कर चुके, एक एक सूरत पे कई कई जिल्दों की तफसीरें मौजूद हैं। आपका मेरा मौकाम क्या है, अपने आप को इस किताब के अमल के पहलुओं से जोड़ लीजिए। सही मुस्लिम की रिवायत है कि जो अल्लाह के घरों में से किसी घर में बैठा, जैसे इस वक्त आप और मैं बैठे हैं, फरिश्ते उनको ढांप लेते हैं और सकीनत नाजिल होती है और इस तरह वो अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाते हैं हत्ता कि वो फरिश्ते आसमानों तक पहुंच जाते हैं। इब्ने कसीर कहते हैं कि कुरान पे तदब्बुर ना करना, यानी गौर व फ़िक्र ना करना, इसको छोड़ने के बराबर है। कहाँ पड़ा छोड़ने की बात? सूरत फुरकान 19वां पारा, अल्लाह का नबी कह रहा है इन्नकौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआनी महजूरा। फिर याद रखिए कि जितना गौर व फ़िक्र में इजाफ़ा होगा उतनी ही मार्फत मिलेगी, यकीन मिलेगा, ईमान मिलेगा। आप कह लीजिए कि ये किताब आपको मेरे आपके हकीकी दुश्मन से आगाह करवाती है, और जितना गौर व फ़िक्र करेंगे उतनी बसीरत बढ़ती जाएगी। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह कहा करते थे कि जो हिदायत हासिल करने के लिए गौर व तदब्बुर करता है उसके लिए हक़ का रास्ता वाज़ होगा, शरे सदर हो जाएगा और दिल रोशन हो जाएगा। अल्लाह हमें ये सब दे दे। इमाम सय्यूती बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं, उलूमुल कुरान पे इन्होंने बहुत काम किया, किताब भी है इनकी बहुत सारी। कहते हैं कि सबसे बड़ा मुतालबा मकसद क्या है कि कुरान पे तदब्बुर करो। दुबर होते पीठ को, तदब्बुर के पीछे चलो, हर लफ्ज़ के अंदर से अमल की बातें निकालो, किरत करो, तिलावत करो, इसका फ़हम हासिल करो, क्योंकि इसी से सीने खुलते हैं और दिल मुनव्वर होते हैं। इस तरह ज़रकशी एक मुफस्सिर है, कहते हैं कि जिसके पास ना इल्म है, ना तकवा, ना फहम, वो इससे लज्जत नहीं पा सकता। जैसे आप देखिए कि शायर शायरी करते हुए थकते ही नहीं है जबकि दूसरे बोर हो रहे होते हैं, क्योंकि उनको समझ आता है ना, उनको मज़ा आता है। अब सवाल पैदा होता है तरीका क्या है तदब्बुर का, क्योंकि ये कोई चिल्लाकशी नहीं है, कोई अल्लाह हु करने वाली चीज़ें नहीं हैं। महफिल का तकद्दुस पामाल होने का डर ना होना, तो वो वीडियोस में से कुछ मैं आपको दिखाऊं किसी वक्त, कि आज लोग जब कुरान सुनने नहीं आते, सीखने पढ़ने नहीं आते, तो किन कामों में पड़े में बैठ के अल्लाह हु के मोती जप रहे होते हैं। करना क्या है? सबसे पहली बात है कि अपने दिल को गुनाहों से पाक करें और ज़िंदगी को बुरे आमाल से पाक करें। फिर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरे दिल को खोल दे। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह कहा करते थे कि अल्लाह हमारी नाफरमानियाँ फहमे कुरान के रास्ते में रुकावट बनती हैं, हमारे दिल को नाफरमानियों से पाक कर दे। फिर दूसरा दर्जा क्या होता है? कि दिल को बाकी सब चीज़ों से खाली करें, क्योंकि जिस दिल में बाकी चीज़ों की मोहब्बत होगी ना, वहाँ कुरान नहीं आता। ऐसे ही है कि अलमारी में पहले ही बहुत कुछ पड़ा हुआ है तो और क्या आएगा, कुछ डालना है तो ड्रॉ को खाली करना पड़ेगा। कहते हैं कि तीन मुकामात पर अपने दिल का जायज़ा लो, अगर दिल ना लगे तो कलब सलीम मांगो। नंबर एक, तन्हाई में ख़ुद से पूछिए, अकेली होती तो क्या करने को दिल करता है? गुनाह की बातें के सवाब। दूसरा, ज़िक्र की मजलिसों में। और तीसरा, कुरान पाक पढ़ते वक्त। करना क्या है सारी बात का खुलासा? दिल को कबाड़ खाना ना बनाए, ट्रैश कैन ना बनाइए। सारी नफ़रतें, कदूरतें, हसद, रकाबतें खुरच कर निकाल दीजिए, फिर एक आयत भी पढ़ेंगे अल्लाह आपका दिल खोल देगा। इमाम इब्ने कसीर कहते हैं कि तरतील से पढ़ने से फहम के दरवाज़े खुल जाते हैं। अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपको मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस कुरान पे गौर व फ़िक्र में इस्तेमाल करने की तौफीक दे। क्या सीखा? और कुरान के बाज़ अहकामात पे अमल करना और बाज़ पे ना करना, इसको छोड़ना है, मैंने इससे पनाह मांगनी है। बेजा रसूमात से जिहाद करना है, कतः रहमी नहीं करनी, सिला रहमी करनी है, अंधे और बहरे बनकर नहीं, अकल और शऊर के साथ जीना है, दीन की मुखालफत नहीं करनी, राह हिदायत पर इस्तकामत की दुआ करनी है। चलिए आयत 29 से 38, अब यहाँ से मुनाफिकीन की किस्से और बातें शुरू हो रही हैं। मदनी सूरतें पढ़नी इसलिए भी बड़ी मुश्किल होती हैं, इतना मुहासबा, इतना मुजाकरा के पसीने पसीने हो जाए बंदा। कैसे? टॉपिक लिख लीजिए, खुद ही समझ आ जाएगा। अगर वो तुमसे कुछ मांग ले तो तुम बुखल करने लगोगे। कौन? अल्लाह। अगर बंदे से कुछ मांग ले तो बंदा बुखल करने लगता है। ये तो अल्लाह ही है, तो दिन रात दे दे के भी नहीं थकता। अल्लाह हमारे दिलों के निफाक को दूर कर दे। आयत नंबर 29 से, अम हसिबल्लज़ी नफ़ी कुलूबिहिम मरद, क्या इन लोगों ने जिनके दिलों में बीमारी है, लिख लें कौन सी बीमारी, एक ही बड़ी बीमारी है जिससे फिर बाकी बीमारियाँ, हुब्बे दुनिया की बीमारी, निफाक की बीमारी, दीन से दूरी की बीमारी, क्या ये समझ रखा है कि अल्लाह इनके हसद और कीनों को ज़ाहिर ही ना करेगा, और अगर हम चाहते तो इन सब को तुझे दिखा देते, बस तो इन्हें इनके चेहरों से ही पहचान लेता, और यकीनन इन्हें इनकी बात के ढप से पहचान लेगा, तुम्हारे सब काम अल्लाह को मालूम है। यानी मुनाफिक तो अपनी बातों से पहचाना जाता है, ढीली ढाली बातें, तोड़ी मोड़ी भी बातें। यकीनन हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे ताकि तुम में से जिहाद करने वालों और सब्र करने वालों को मालूम कर लें, और हम तुम्हारी हालतों को भी जांचेंगे। यकीनन जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से लोगों को रोका और रसूल की मुखालफत की, इसके बाद इनके लिए हिदायत ज़ाहिर हो चुकी, ये हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह का कुछ नुकसान न करेंगे। अन करीब इनके अमाल वो गारत कर देगा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल का कहा मानो और अपने अमाल को गारत न करो। जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से औरों को रोका, फिर कुफर की हालत में ही मर गए, यकीन कर लो कि अल्लाह इनको हरगिज़ न बख्शेगा। अल्लाह हमें इस बुरे अंजाम से बचाना। बस तुम कमज़ोर बनकर सुलह की दरख्वास्त पर मत उतर आओ, जबकि तुम ही बुलंद व गालिब रहोगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है, नामुमकिन है कि वह तुम्हारे अमाल को ज़ाया कर दे। वाकई ज़िंदगानी दुनिया सिर्फ खेल कूद है, और अगर तुम ईमान ले आओ और तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारे अजर देगा, और वो तुमसे तुम्हारे माल नहीं मांगता। और अगर वो तुमसे तुम्हारा माल मांगे और ज़ोर दे कर मांगे तो तुम इस वक्त बखीली करने लगोगे, और वो बखीली तुम्हारे कीने ज़ाहिर कर देगी। खबरदार तुम वो लोग हो कि अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाए जाते हो, तो तुम में से बाज बखीली करने लगते हैं। हम अपने आप को खुद ही ढूंढ लें, क्या मैं इन बाज में हूँ या मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूँ जो बुखल नहीं सखावत करते हैं, जो किसी के मजबूर करने की वजह से नहीं अपने दिल के मजबूर करने की वजह से अल्लाह के रस्तों में देते हैं, और जो बुखल करता है तो वो तो दरअसल अपनी जान से बखीली करता है। अल्लाह ताला गनी है और तुम फ़कीर और मुख्ताज हो। कभी आपने किसी दौलतमंद को किसी फ़कीर से कुछ मांगते देखा? वो कहेगा ये देगा कि इसके घर हो गया क्या? कभी अपनी मासी से आपने कहा मुझे ज़रा 500 का एक नोट तो देना? यहाँ से समझिए, अल्लाह को आपसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अल्लाह आपका दिल देख रहा है, अल्लाह आपकी असल चाहता है खुल जाए, आप अल्लाह से जो लेना देना चाहते हैं उसकी असल खुल रही है, और अगर तुम रूगर्दानी करो यानी मुंह फेरो तो वो तुम्हारे बदले तुम्हारे सिवा और लोगों को लाएगा, फिर वो तुम जैसे ना होंगे। यकीन करें, ऐसे लगता है थप्पड़ है ये आयत मुंह पे हर उस बंदे के जो मुंह से अच्छी बातें करता है। और जब हम कुछ करना नहीं चाहते ना तो फिर हम इतराज़ात बड़े करते हैं, और जब हम कुछ देना नहीं चाहते ना तो मशवरे बड़े देते हैं, ये कर लेते, ये कर लें, वो कर लें, तबसरे बहुत करते हैं। आज भी देखिए घर बैठे तबसरे करेंगे, कुछ करना है तो दुआ कर दीजिए, कुछ करना है तो अच्छी उम्मीद रख लीजिए। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा का एक इज्तमाई मसला बन गया, हम दुनिया पे खर्च करें, अपनी ज़ात पे करें, नाम पे करें, शोहरत पे करें, कपड़े लत्ते पे कर लें, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कोई नहीं पूछता कि ये फ़ैशन क्यों बदलता है हर चंद माह बाद, क्यों कहते हैं पिछले साल के लॉन के कपड़े किधर गए हैं जो अब फिर चल पड़े हो, और अब नई मुसीबतें, ये एल्बम है तो ये फलाने ईयर का, तो ये फलां का, तो ये उसका ब्रांड, कोई नहीं पूछता। मैं एक छोटा सा काम दूँ, आज घर जाकर हम में से हर एक, मैं भी कर लूँगी, मुझे कोई शर्म नहीं आएगी क्योंकि मेरे पैसे कोई नहीं लगे होते, हम अपनी अलमारी खोलकर अंदाजन हर जोड़े की कीमत कैलकुलेट करें। पांच जोड़े हैं तो पांच को ज़रब दे लीजिए, और आपको अंदाज़ा नहीं है तो बहुत सारे बैठे हैं इधर, उनसे अंदाज़ा लगवा लीजिए कि अगर ऐसा एक जोड़ा आप ख़ुद ख़रीद कर दर्जी से सिला कर पहने तो कितने पैसे लगते हैं। यकीन करें कल से आप लॉक लगा कर आएंगे अपनी अलमारी को, कई लाखों के जोड़े हैं आपकी, ये एक आम डेली वार्डरोब में, मैं शादी के जोड़ों की बात नहीं कर रही, गलत कह रही हूँ कि सही कह रही हूँ जी। अक्सर मैंने सिस्टर से सुना है सारा सीज़न बारी कोई नहीं आई कपड़े की, भाई क्यों, कहती है ही इतने थे तो भाई इतने लेने की क्या ज़रूरत थी, नहीं वो गए तो ये डिज़ाइन अच्छा लग गया, वो गए तो ये सेल पे था, वो गए तो ये, वो गए तो वो, एक एक लाख रुपए के एक सीज़न के कपड़े बनते हैं इस वक्त। चंद दुखी लोगों ने इस दुख का इजहार भी किया कि हमारी औरतें एक एक सीज़न में लॉन का एक एक लाख रुपए के जोड़े सिला लेती हैं, और वो कहती हैं क्या लिया, 10 जोड़े तो बनाना ही पड़ता है और 10,000 से कम तो पड़ता ही कोई नहीं जोड़ा। और जब बात हो अल्लाह के रस्तों की, छिलका निकाल कर भी कहेंगे बस काफ़ी नहीं है। इस उम्मत की हालत नहीं बदलेगी। और देखिए ये आखिरी आयत पढ़ के तो मेरा दिल करता है मैं मुँह पर कपड़ा देकर चेहरा छुपा के यहाँ से बाहर चली जाऊँ। वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अल्लाह ऐसे बोन मुस्लिम को हटा रहा है उनकी जगहों से, निकलो, गेट आउट। अमेरिका में एक दावा सेंटर के नाम पे बहुत खूबसूरत मस्जिद है, जब मैं बिल्कुल वहाँ नई नई गई तो शौक़ होता है हर जगह जाने का, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें मुझे मस्जिदों में और इधर उधर हम जाते थे। जब मैं वहाँ गई ऐसे लगता था जैसे मुगलिया दौर की इमारतें नहीं होती हमारे शहरों में। मैंने कहा ये क्या है, मस्जिद थी, हम गए नमाज़ पढ़ी, मैंने कहा ये कैसे, कहते ये एक बैंक था, सिटी का सेंटर है बिल्कुल, जो लोग वहाँ से सुन रहे हैं वो मेरी बात समझ जाएंगे, से दिल हार्ट ऑफ द सिटी, सबसे महंगी ज़मीन। और वो कहते हैं एक बैंक था वो बिकने पे आया और उसको कोशिश की गई ख़रीदा जाए, क्योंकि उसके इर्द गिर्द सब ऑफिसेज बिल्डिंग और बहुत सारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं कि इस इलाके में मस्जिद नहीं है। आपको पता है किसने, कितनों ने ख़रीदी, एक शख्स ने, और वो कौन था, आज भी ह्यूस्टन में उसके नाम की तख्तियाँ कहीं लगी होंगी, रिवर्ट था। मुझे नाम भी आता है आपको क्या बताऊँ, सिर्फ एक शख्स ने वो कई लाखों डॉलर उस दौर के, आज मतलब आपके कई करोड़ों की वो एक बिल्डिंग ख़रीद कर फिर उसको अंदर से सब मस्जिद बना दिया। अल्लाह को मेरे आपके माल की ज़रूरत नहीं है, और सच कहूँगी आज हम बोन मुस्लिम अपने ऊपर लगा रहे हैं, रिवर्ट्स दीन पे लगा रहे हैं, उनका ईमान नया, उनका ईमान खरा, हमारा ईमान पुराना हो चुका है, अब पुराने कपड़ों की तरह जान निकलती, ज़कात देते हुए जान निकलती है कि 7 तोले पे है तो किस 7 के बाद वाले तोलों पे है कि 7 से शुरू हो जाए, ये भी सवाल होते हैं। वैसे 8 तोले जो है तो फिर 1 तोले पे देनी है ना, 7 की तो नहीं ना देनी, वो तो ग्रॉस वेट था ना हमारा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्या अल्लाह ये नहीं कह सकता कि 2.5 तुम रख लो, 97 मुझे दो, कर सकता था अल्लाह, कहते तुम्हारी तो जान निकल जाती, तुम तो सब हॉस्पिटल पहुँच जाते। और जब बाहर के नोटों की करेंसी को पाकिस्तान में रिवर्ट करके ज़कात निकले, कई बिस्तर पे पहुंच जाते हैं, हाय इतनी ज़कात है मेरी, नहीं जी इससे कितने गुना आपके बैंक में भी पड़ी हुई है, उसको भी ज़रा दे लें ज़रा करेंसी कन्वर्टर से। किधर लेकर जाएंगे अगर हमारी नस्लें बिगड़ गईं, अगर हम जहालत की मौत मर गए, हमारे इर्द गिर्द दीन ना फैला, किधर लेकर जाएंगे। कब्र तो बड़ी सस्ती है पाकिस्तान में, तो मुझे लगता है फ्री है कब्र, बाहर के मुल्कों में आपको पता है कब्र कितने की है, सिर्फ जगह ज़मीन के एक टुकड़े में $2,000, और फिर उसका हर साल कुछ ना कुछ देना भी पड़ता है, हर मुल्क का फ़र्क है। और नॉर्वे का तो मुझे इन्होंने बताया कि पहले कब्र की जगह ख़रीदते हैं, यानी वहाँ यकीन करें मैं मुबालगा नहीं कर रही, लोगों ने कमेटियाँ डाली हुई आज, और वहाँ ग्रुप्स बने हुए हैं, हर महीने आप सब थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं कि अगर किसी वक्त खुदा ना खास्ता हमें या हमारी फैमिली को कुछ हो गया तो हमारे कफन दफन के पैसे तो हों। कई हज़ार लगता है, लोग जमा कर कर के रखते हैं और फिर जो फौत होता है उस पर वो खर्च करते हैं। और शायद मैं गलत ना कह दूँ, अगर कोई नॉर्वे से सुन रहा है तो मेरी बात में इसलाह कर दे कि 10 साल तक के लिए वो ज़मीन लीज पर देते हैं जिस पर आपकी कब्र है, फिर क्या करते हैं बिल्डोज़र डाल के अगलों को बेच देते हैं, आओ अब तुम अपनी कब्र बना लो इस पर, इतनी महंगाई है वहाँ। अल्लाह किसी दुश्मन को भी बाहर न मौत दे। लेकिन हम सब के नसीब में वही मिलेगा जो हम चाहेंगे। सहाबाए कराम का तकवा क्या था, ज़रा मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाना चाह रही हूँ। किताबु सलात से ये रिवायत है। इमाम मोहम्मद बिन नसर मरज़वी कहते हैं कि सहाबा का ख्याल था कि ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ कोई गुना नुकसान नहीं देता, जैसे कि शिर्क के साथ कोई नेकी नफ़ा नहीं देती। इस पर आयत उतरी कि नहीं, अतीउल्लाह व अती रसूल। अब तो सहाबा कराम इससे डरने लगे कि गुना नेकियों को बातिल न कर दें। और दूसरी रिवायत में कि सहाबा का ख्याल ये था कि हर नेकी यकीनी तौर पे कबूल होगी। यहाँ तक कि आयत उतरी तो कहने लगे कि हमारे आमाल बर्बाद करने वाली चीज़ कबीरा गुनाह और बदकारियाँ करने वाले पर इन्हें खौफ रहता था और इनसे बचने वाले के लिए उम्मीद रहती थी। यानी सहाबा कराम खौफ सता थे अपने गुनाहों से और अपने नेकियों के रिजेक्ट होने से डरते थे। अल्लाह के नबी से इस आयत के बारे में पूछा गया तो आपने सलमान फारसी के कंधे पर हाथ रख के फरमाया, इससे मुराद ये और इसकी कौम है, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर ईमान सुरैया सितारे के साथ भी लटका हुआ हो तो इसको फारस के कुछ लोग हासिल कर लेंगे। और आपको पता अल्लाह के नबी की ये खुशखबरी कैसे पूरी हुई? कौन था फारस से? इमाम बुखारी रहमहुल्ला। इल्म का विरसा सारा उस शहर से निकला। ये शहरों के नसीब होते हैं, अल्लाह हमारे शहर का भी नसीब संवार दे। क्या सीखा? दिल को हसद और कीने की बीमारी से बचाना है, मुनाफ़क़त से बचना है, अगर कोई आजमाइश आ जाए तो सब्र से काम लेना है, हिदायत ज़ाहिर होने के बाद हठ धर्मी नहीं दिखानी, अपने अमाल को गारत नहीं करने देना, ईमान पर ख़ात्मे की दुआ करनी है, बुखल से बचने की दुआ करनी है और अल्लाह से ये दुआ करनी है कि अल्लाह तो हमें नबी सल्लम के असहाब की तरह खाद बना दे इस इस्लाम की खेती में। चाहे इस्लाम मغلوب हो या गालिब हो, मोमिन अपने काम में जुटा रहता है। बेकार के तबसरे, यूज़लेस टॉक्स, ये ना वो ना, इफ्स एंड बट्स, प्रोज एंड कॉन, ये करने वाले दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम ना करके गए। नबी सल्लम की कामयाबी की बहुत बड़ी वजह आपके असहाब थे, जिसका ज़िक्र अब हम अगली सूरत में भी पढ़ेंगे। आपने सहाबा की एक ऐसी खेती तैयार कर दी कि जिसके ऊपर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह फसलों की फसलें तैयार हो रही हैं। असल बात यह कि आपको मुझे अपनी फ़िक्र करनी है कि अगर कल मैं ना बची तो क्या होगा।